नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग के आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख को होगा। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन से शुरू होगी। 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बातचीत का उद्देश्य आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना और राज्य के विकास को उजागर करना था। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में असम के कायापलट का जिक्र करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में हुई तीव्र प्रगति एनडीए सरकार के डबल इंजन मॉडल की सफलता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि रुपए का मूल्य बाजार से प्रेरित है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं। आज लोकसभा में रुपए के अवमूल्यन पर प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण दुनिया भर की मुद्राओं में अस्थिरता देखी जा रही है। वित्त मंत्री ने प्रमुख आर्थिक संकेतों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति कम हो गई है, जीडीपी वृद्धि दर 7% से ऊपर बनी हुई है और चालू खाता घाटा 1% से कम है। लोकसभा ने दिवाला शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। यह विधेयक पहले संसद की प्रवर समिति को भेजा गया था। इसके बाद दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 में आगे संशोधन के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य प्रक्रियागत विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। लोकसभा में दिवाला शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक आईबीसी 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस संहिता का उद्देश्य सिर्फ ऋणों की वसूली के तंत्र के रूप में कार्य करना नहीं बल्कि कारोबार को बचाना, वित्तीय संकट का समाधान करना और उद्यम को सुरक्षित रखने के लिए ढांचा तैयार करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि संशोधन विधेयक में कुल 12 संशोधन शामिल किए गए हैं। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये स्वतंत्रता के बाद की 8वीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। श्री नारायण ने कहा कि पहले चरण में घर घर की सूची बनाना और स्वगणना की जाएगी।
जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक बृहत कार्य है। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। यह जनगणना 2 चरणों में सम्पन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है।
बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए हाल ही में चुने जाने के बाद संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। वे इस महीने की शुरूआत में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश को ईंधन भेजने में भारत के सहयोग का आभार व्यक्त किया है। कोलंबो में पेट्रोलियम की एक बड़ी खेप पहुंचने के बाद श्री दिसानायके ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका में ईंधन की कमी के बारे में बात की थी। भारत की शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना है। जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी पिछले साल दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र बिना बाजू वाली तीरंदाज बनी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।